वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते आय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्षिते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुषोऽस्मिभिहीनाय पराधलस्यै चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना सिन्धेनुमस्ति कवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति तिष्ठ राधे सन्नय मां शरण। आज सवेरे आप लोगों ने अजामिल उपाख्यान श्रवण किया, महाराज चित्रकेतु का उपाख्यान श्रवण किया, अभी अभी प्रहलाद महाराज जी का चरित्र भी श्रवण किया। श्रीमद् भागवत की ये तीनों विशेषताएं हैं, कहीं भी ऐसा सुंदर सिद्धांत नहीं बतलाया गया है, कहीं विशिष्ट मिलता है। इसीलिए ये श्रीमद् भागवत वेदों का भी प्रपक्व फल है, ये पहले ही बतलाया गया है। निगम कल कतरोर गलितंग फलम सुखम खा धम्रवचन शिवत भगवतरा भगवत रसमालय मुहुर्हो रसिका। वेद रूपी कल्पतरु का यह प्रपक्व फल है, जैसे रस तो पेड़ की मूल में भी होता है, पेड़ में भी रस होता है, उसकी डालियों में भी रस होता है, पत्तों में भी रस होता है, किंतु फल पकने के बाद में उसमें जैसा रस आता है पेड़ में, उसकी जड़ में, जड़ में, पत्तों में, डालियों में वह मधुर रस नहीं होता, पेड़ के फल नहीं वो मधुर रस। इसलिए निगम अर्थात वेद उपनिषद का कल्प असम है, जो इच्छा तो याद सकते हैं, किंतु वेदों से वह रस नहीं आएगा जो श्रीमद् भागवत में रस प्रणाम किया गया। इसलिए वेदों का विस्तार, उपनिषदों का विस्तार, गीता का विस्तार श्रीमद् भागवत, जिसने श्रीमद् भागवत श्रवण कर लिया और किसी को श्रवण करने की जरूरत नहीं, तो श्रीमद् भागवत के उपदेशों का पालन करके जीवन उनका सार्थक हो जाए। हम सभी लोग भगवान को भूल करके इस जगत में, यह हमारा अपना नित्य घर नहीं है ये जगत, कब जाना पड़ेगा कभी ठीक नहीं। इसलिए शास्त्रों ने बताया कर्म ज्ञान योग तपस्या से भगवान को नहीं पाया जाता, केवल मात्र भगवान की भक्ति से ही भगवान को पाया जाता, और भक्ति जिसको नहीं है वो भागवत नहीं समझ सकता है। भागवत पढ़ने का सुनने का वही अधिकारी है जिसको भक्ति है। पहले तो ये समझे कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, भगवत्ता की सीमा कृष्ण में है, वे अखंड रसामृत हैं, इस चीज को समझे। व्यास जी के वचनों में, सुखदेव के वचनों में विश्वास है कि जो कुछ कर रहे हैं ये परम सत्य है, इसलिए भागवत में कहा गया है एक ही चांस कला पुनता कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, बाकी सब उनके अंश हैं। इस चीज को समझना चाहिए, अंश होने से ही वो छोटा हो गया और अंश होने से बड़ा हो गया, ऐसा नहीं, तत्वतः सभी एक ही है। एक ही चंद्र में 16 कलाएं होती हैं, त्रिपिया की कला तिरछी है छोटी, किंतु असल में उसी दिन पूर्णिमा वहां पर भी है। इसलिए कृष्ण तत्व की दृष्टि से और सब तत्वों से बराबर होते हुए भी रस की दृष्टि से कृष्ण का वैशिष्ट्य है। कृष्ण संपूर्ण, इसलिए श्रीमद् भागवत में भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को पा सकते हैं, और उस भक्ति में भगवान का नाम सबसे श्रेष्ठ है। चाहे आदमी अत्यंत दुराचारी हो, कपटी हो, धूर्त हो, बदमाश हो, चोर है, डकैत है, खूनी है, सब कुछ है, किंतु वहीं से भगवान का नाम कर सकता है। वह चोर है इसलिए भगवान का नाम नहीं कर सकता, पहले चोर छोड़ करके चोरी, और अच्छा डकैत छोड़ करके बुरा छोड़ करके फिर भगवान का भजन करेंगे, ऐसा नहीं। उसी स्थिति से ही भगवान का भजन आरंभ कर दे। भगवान का नाम उसके जितनी भी दुर्वासनाएं हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, दोष है, सबको सुधार करके उसको विश्व में सर्वोत्तम व्यक्ति बना देगा। उसी का उदाहरण भागवत में अजामिल के द्वारा दिया। अजामिल बचपन में ब्राह्मण का बालक था, सदाचारी था, माता पिता का आदर करता था, अच्छे कुली घर की एक अच्छी लड़की से शादी हुई, उसके कुछ बाल बच्चे भी हुए, और तब वो पिता के लिए वन में गया लकड़ी लाने के लिए। वहां एक नीच जाति की लड़की से एक व्यक्ति को दुराचार करते हुए देखा, मदिरा पान कर रहा था, कपड़े ठीक नहीं, उसे हंसी मजाक कर रहा था, देख करके अपने को संयम करने की बहुत चेष्टा उसने की, किंतु जितने ही कितने मन को एकाग्र करना चाहा, संयमित करना चाहा, मन उसके हाथ से निकल गया। घर लौटे आ, माता पिता को कहा नहीं, उनके सारे धन चुराकर उस लड़की को देकर के उसके साथ में रहने लगा। जब धन समाप्त हो गया, वो भी उसी स्त्री के पास में आ गया, डकैती से चोरी से उसका भरण पोषण करता, यहां तक कि चोरी डकैती खून सब करने लगा, शराब पीता था। उससे उसको 8 लड़के हुए। जब 8वां लड़का पैदा हुआ तो वो बूढ़ा हो चुका था, और थोड़ी देर के बाद ही में उसको एक बेटा हुआ, उसका नाम हुआ नारायण रखा। उस समय तक वो चोरी करता था, डकैती करता था, शराब पीता था, दुराचार में कोई भी पाप बाकी नहीं, माता पिता को तो छोड़ ही दिया था, स्त्री को भी छोड़ दिया, बाल बच्चे को भी छोड़ दिया, और दूसरी एक दुराचारणी स्त्री से उसको आज उसका नाम लग दिया था। इसका फल क्या होता है वो नहीं समझा। मरने को जब हुआ तो जब भयानक उसके 3 प्रकार के कर्म, सात्विक, राजसिक और सामाजिक, तन से, मन से, वचन से जो किए जाने वाले कुकर्म थे, उन्हीं का रूप धारण करके 3 जमदूत आए और उसको प्राणों को खींचने लगे। ये डर गया, पासी में बच्चा उसका नारायण नारायण बच्चे के लिए पुकारा, किंतु नारायण भगवान का नाम 4 अक्षर का, 4 विष्णु के दूत आए, उन्होंने जम के दूतों को भगा दिया। इन्होंने ये सब बतलाया होगा, और बतलाया देखो धर्म के ठेकेदार बने हुए हो, इसको नरक क्यों ले जा रहे। मैंने कहा ये हम लोग धर्म का तत्व जानते हैं, इसने अपनी पिता माता को छोड़ दिया वृद्धावस्था में, अपनी औरत को भी, अपनी स्त्री को भी जो सती साध्वी थी उसको छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, एक शूद्रानी लड़की से अवैध संबंध किए, चोरी डकैती खूनी जो कुछ पाप होता है सब कुछ पाप किया, इसलिए इसको दंड देने के लिए हम ले जा रहे हैं, इसका काल समाप्त हो गया। जम के देतों ने कहा और कुछ किया तो, और तो कुछ नहीं किया, अरे कुछ प्रायश्चित किसने किया? नहीं। अतः तुम जानता नहीं है भगवान का एक नाम लेने से, किसी प्रकार से भी नाम हो, जान बुझ कर कर ले, सत्ता से ले, चलते फिरते छूटते उठते बैठते किसी प्रकार से भी भगवान का नाम निकल जाए तो उसके जीवन में किए हुए समस्त पापों को, दूसरे जन्म में भी किए हुए पापों को सबको विनष्ट कर देता है। किसने अंतिम समय में नारायण नाम तो किया था, या तो था किंतु अपने बेटे के लिए किया, भगवान के लिए किया, तो जिससे भी जैसे भी वो अपने बेटे के लिए करे ना करे, जैसे भी चलते फिरते जम्हाई में भी राम राम निकल आएगा तो उसके साथ पाप जल जाते हैं। विशेष करके मृत्यु के समय में जो भी लोग भी मृत्यु के समय में भगवान का नाम नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कर जाते हैं, जन्म जन्म जतन करते मृत्यु के समय में भूल जाते हैं। एक सुख पक्षी को हमने राम राम पढ़ाया, वो रोज सवेरे में राम राम कहता है, किंतु ज्यों ही तिल्ली आकर के एक थप्पड़ पंजे पर मारा के करेगा, भगवान का नाम नहीं आएगा। वैसे हम लोग कर रहे हैं कि मृत्यु के समय में भगवान का नाम नहीं याद आएगा। कफ बात पित्त फेर लेने, जिसका निकल गया परम सौभाग्य है, जम के दूध वहां से फंस जाएंगे। इसलिए तुम लोग इसे छोड़ करके जाओ, एक नाम जो विवश होकर के भी ग्रहण कर लिया, संकेतम परिहासम सौभम हेलन, हेला पूर्वक भी यदि किसी ने अपने कुत्ते का नाम श्याम रख दिया, काला कुत्ता श्याम नाम रख दिया, मरते समय यदि श्याम कह दिएगा कुत्ते के लिए भी, तो वो भगवान का नाम हो जाएगा, उससे सब पाप चल जाएगा। देखो हमारा हिंदू धर्म कितना सरल है, सहज है। नमाज न भी करो, नमाज में देखो 10 बार 20 बार बैठना पड़ता है। हमारे यहाँ सिर्फ मज्जू का उप राम राम कृष्ण कृष्ण कह दिया, नारायण कह दिया, हरि कह दिया, बस हो गया। तो लोग कहेंगे इसे तो संसार के सब लोग तर जाएंगे, तो हरि क्या है? सब लोग माने कितने लोग कहेंगे जो यहाँ पर बैठे हैं, बाकी लोग जो घर में कहेंगे उनका तर जाएंगे, किंतु करोड़ों करोड़ों जीव है, सुअर है, गधे हैं, इंग्लैंड अमेरिका के लोग जानते नहीं है ये सब। इसलिए जब विवश होकर के भी किसी दूसरे उद्देश्य के लिए भी किसी को चिढ़ाने के लिए भी राम राम कह दिया, तो भी चलते फिरते फिसल गया गिर गया कोई, तो भी भगवान का उसका कल्याण कर देते। एक समय एक सुअर जंगल में बैठा था और एक आदमी मुसलमान गाड़ी चला रहा था, वो उतर करके चट्टी करने गया। सुअर ने बहुत दूर से देखा और वो नाक की सीध में दौड़ते और चलते हैं, वहीं से दौड़ा उसको देख करके नाक की सीध में, और पैने दांतों से तीखे दांतों से उसको दो भागों में चीर दिया ऊपर से। मरते समय हराम हराम कहा, मुसलमान लोग हराम कहते हैं सुअर को देखकर, हराम कह दिया, किंतु हो गया क्या हराम? भगवान ने कहा कि हमें पुकारा, ठीक है जैसे तैसे हमें तो पुकारा, इसलिए आप लोग खूब विश्वास के साथ में इसी भागवत की कथा पर विश्वास कर रहे हैं। कहने वाले कौन है? सुखदेव गोस्वामी, व्यास जी भगवान के अवतार हैं, वो कह रहे हैं, नारद जी बतला रहे हैं, इसलिए ये असत्य नहीं है। इसलिए हरिनाम अभिषेक करेंगे जिससे कि मरने के समय में हमें याद आ जाए। यदि आ गया तो जम ने कहा जमदूतों को, देखो इनके पास में मत जाना, इसने एक बार भी भगवान का नाम किया, जिसके गले में तुलसी की माला हो खबरदार मत जाना, जिसने भगवान का चरणामृत एक बार भी पान किया है, भागवत की कथा में कहीं भी बैठ गया हो, जैसे तैसे भी बस पूरी कथा नहीं सुनी भी हो, उसके पास से मत जाना जिसका सिर एक बार भी भगवान के लिए है। नप गया हो, प्रणाम कर दिया हो, जैसे तैसे भी उसके पास में खबरदार मत जाना, उसे तीन कोस दूर रहना। मैं तो भगवान का नाम किया, तुमको नहीं जाना चाहिए। उसने कहा कि प्रभु हम तो जानते थे कि आप ही जगत के मालिक हैं, अब दूसरा कोई मालिक है क्या इसका? तो हाँ, हमारे भी मालिक वो प्रभु हैं जिनका ये नाम नारायण या भगवान या कृष्ण है, वो हमारे पास। आजकल का आधुनिक समाज के व्यक्ति थोड़े से ABCD पढ़ लिए, क ख ग घ पढ़ लिया, इन सबको नहीं मानते हैं, विशेष करके जिनका विदेशी ये सब हो गया, नहीं मानते। तो उनकी दुर्गति भी ऐसे ही होती है। अस्पतालों में जाते हैं, डॉक्टर कहेगा कि इनसे कोई मत मिलो, तुलसी का पत्ता भी नहीं लेकर के दे सकते। कोई मिलने भी नहीं जाएगा जो घर वाले कहेंगे कि हरिनाम करो, ये गति भी है। उसे अच्छा है कि हम निर्धन बने रहें, अपने समाज में ही हमारी मृत्यु हो, भगवान का नाम जैसे तैसे ले ले, तुलसी गंगा जल कोई दे दे, गोदावरी का पानी दे दे, कहीं का भी दे दे, और भगवान का नाम बनाए, गीता भागवत वहां रख दे, तुलसी का पत्ता भी उसे छू जाए तो उसे जमदूत नहीं ले जाए, ये गारंटी बात और निश्चित बात। यदि भागवत सुन करके यदि आपको यह पक्का विश्वास हो गया और आज से ही आपने हरिनाम करना शुरू किया, जितने भी दुराचारी क्यों न हो, जितने जो कुछ भी आपने पाप किया, सब पाप आपके जरूर भूल जाएंगे। इसलिए पढ़ो लिखो, घर का काम करो, सब कुछ करो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, किंतु भगवान का नाम इसमें। अंततः सवेरे रोज और कुछ नहीं आता है तो ये तो कहो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अरे इतना नहीं आता। राम हरि कृष्ण तो कह ही सकते हैं ना, राम हरि कृष्ण, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल, अरे इतना तो कर सकते हो। इस तरह से भगवान का कोई सीना, इसलिए जम के दूध कभी नहीं आएंगे, ये गारंटी है। ये भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करके कह रहे हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम वही वसुनी बलम कलऊ नाश सेव गति रंग। कलयुग में दूसरा कोई गति नहीं है, भगवान नहीं विद्या आती है कोई बात नहीं, नहीं संस्कृत श्लोक आता है कोई भी बात नहीं, कृष्ण हरि राधे श्री राधे जय श्री राधे, ये सब तो कही, राम सीता ये सब तो कही सकते। इसलिए इस पर पक्का विश्वास रहेंगे, इसलिए आज ही से रोज सवेरे भगवान का स्मरण करेंगे और भगवान का। और भी शास्त्र में बतलाया भगवान की महिमा, ये गीता भागवत में खुद कह रहे हैं, एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनां नित्यनिर्णितम् हरि नामानि। यह निश्चित रूप से निर्णित हो रहा है, निश्चित रूप में निर्धारित है, सत्य है, परम सत्य है कि भगवान का नाम संसार से उद्धार करने वाला होता है। इसको जिसमें कोई कामना है, जिसमें कोई प्रकार की कामना नहीं है, जो योगी है, ज्ञानी है, कर्मी है, जो भक्त है, सबके लिए ही, समस्त प्रकार के मनुष्यों के लिए भगवान के नाम ही एकमात्र गति है और सुनते की गति है। यहां तक कि भागवत का संबंध जब तक दिया संपूर्ण। और परीक्षित महाराज जी को बतला करके जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अंत में यह बतलाया गया द्वादश स्कंध का अंतिम श्लोक, इसके बाद में कोई श्लोक नहीं, भगवान का नाम कीर्तनी समस्त प्रकार के दुखों का शमन करने वाला है। नाम संकीर्तनम यच्च सर्व पापो प्रणामो संभरि, हरि को मैं प्रणाम करता हूं जिसका एक नाम का आभास, नाम शुद्ध नहीं, वो तो प्रेम दे देगा भगवान का, प्रेम में बात न करा देगा, यदि नाम का आभास भी है तो भी संसार से, दुष्ट संसार से उसका सदा के लिए उद्धार। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान, वाल्मीकि जी उल्टा मरा मरा करके ब्रह्म के समान बन गए, आपके अगस्त ऋषि इसी दक्षिण देश में कन्याकुमारी के पास में बैठे हुए थे। चिड़िया ने कहा कि हमारा घोंसला उजाड़ करके समुद्र ने हमारा अंडा बहा ले। वो लौटाता नहीं है, बार बार वो चिड़िया रो रही है। उन्होंने कहा कि नहीं देता तो नहीं, उन्होंने आकर के कहा समुद्र इसका अंडा लौटा दे। तो नहीं लौटाया तो उन्होंने क्या किया, नहीं लौटाएगा अच्छा तो देखो, बस उठाया पानी और देकर पूरा उसे सोच गया। भागवत में भी इसका दूसरे रूप में वर्णन है। कुछ दुष्ट असुर लोग समुद्र में रहा करते थे और संसार में उत्पात मचाते थे। देवताओं ने अगस्त से कहा कि इसमें कुछ दुष्ट लोग रहते हैं जो जगत में अत्याचार करते हैं, आप समुद्र का पानी सोख लें तो इनको मारा जा सकता है। तो उन्होंने घट उठाया पानी और किसके बल पर, राम नाम के बल पर, राम की आराधना कर। इस तरह से श्रीमद् भागवत में नाम की भूमिका है। इसलिए भागवत श्रवण करके नाम के प्रति आप लोगों का जरूर विश्वास। इसके बाद में आया चित्रकेतु उपाख्यान। महाराज चित्रकेतु बड़े भारी पराक्रमी राजा थे, बड़े विद्वान थे, बुद्धिमान थे और उस समय सारे विश्व में उनका राज्य था। केवल भारतवर्ष ही नहीं, सारे विश्व में आधिपत्य था। उनकी आयु हजारों वर्षों माने लाखों वर्षों से भी ऊपर थी। उनकी स्त्रियों का करोड़ों स्त्रियों का उल्लेख नाम है जो उनकी करोड़ों स्त्रियां थी। हम लोग विश्वास नहीं करेंगे किंतु उस समय के लिए संभव था। उस समय आयु लाखों वर्ष अधिक की होती थी और बड़े शक्तिशाली होते थे, किसी को लड़का नहीं था। एक दिन महाराज पर्वत जी, पर्वत ऋषि और नारद ऋषि के पास अंगिरा जी को उन्होंने कहा कि तुम कुशल से है, तुम्हारी रानियां तुम्हारी वशीभूत हैं, तुम्हारी सेनाएं तुम्हारी वशीभूत हैं, राज्य ठीक है तो आनंद से जीवन कट रहा है, तो अर्थ की कमी तो नहीं, जो मनुष्य चाहता है वही सब पूछा उनसे। उन्हें सब ठीक है महाराज आपकी कृपा से, बस एक ही कमी है, मुझे पुत्र नहीं है। मैंने हजारों शादियां की, अब बेटा नहीं, जब बेटा नहीं हुई तो मरने के बाद में हमारी कौन अग्नि का संस्कार देगा, हमारी गति कैसे होगी और राज्य का संचालन कौन करेगा, इसलिए हमको एक बेटा चाहिए। मैंने बेटा तो चले लिखा नहीं, बेटा तो तुम्हें होगा नहीं, महाराज आप समर्थ हैं, आप चाहें तो कर सकते, बेटा उसे सुखी नहीं होगा। भगवान का भजन करने से आदमी सुखी होता है, जीवन में आकर के समझे कि मैं कौन हूं, कभी सुखी हो सकता है। बेटे से तुम और घबरा जाएगा, तुम्हें कष्ट होगा। आजकल बहुत सी स्त्रियां हैं, लड़कियां दो चार हैं तो सुखी नहीं होती, कदे बेटा हो जाए, भले ही बेटा का आकर के उन्हें मारे पीछे, तो अभी बेटा ही चाहिए। अरे बेटियां तो तुमको एक ग्लास पानी भी देगी, नहीं? बेटा वो भी नहीं देगा, बूढ़े होने पर छोड़ देगा, तरह तरह से कष्ट देगा, चाहे तुम्हारा धन संपत्ति है हमको जीवित अवस्था में दे जाओ, नहीं तो तुम्हें सुख कर देंगे, और सुख कर देते हैं, किंतु फिर भी बेटा चाहिए, मोह भंग नहीं होता। आजकल बल्कि लड़कियां अच्छी हैं किंतु बेटे वाले सुखी नहीं है। हम देखते हैं चारों तरफ में, इधर उधर संसार में बहुत कम लोग हैं जो सुखी हैं। इसलिए इसके लिए भगवान ने जो कुछ किया उसे संतुष्ट रह करके भगवान का भजन करना चाहिए भाई, अधिक लालसा मत करो। उन्होंने नहीं माना, जब नहीं माना और बार बार कहते रहे कि एक बेटा हमको चाहिए, तो उन्होंने देखा कि बेटा तो है नहीं, मैं क्या करूं। उन्होंने सोचा कि तो मैं ही इसका बेटा बन जाऊं, योगी तो थे ही, बस वो वहां से चले गए। अच्छा तुमको एक बेटा होगा कि तो तुमको हर्ष और सुख प्रद होगा, दुख भी देगा और आनंद भी देगा। उन्होंने सोचा बेटा तो हो ही जाएगा, अब कोई दुख होगा कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं मानेगा यही तो अखड़ होगा। चले गए ऋषि जंगल में जाकर के अपने शरीर को रख दिया कहीं खंदरे में, और योगाभ्यास से उनकी आत्मा किसी शरीर में प्रवेश कर गई और वहां बेटे के रूप में पैदा हुए। 5 वर्ष तक बहुत सुंदर बेटे के रूप में आए, चांद जैसा मुखड़ा, बहुत ही मधुर बोली, कुशलाता तो इनका दिल भर जाता है। राज्य छोड़कर से उसी रानी के पास में रहने लगे जिसका ये बेटा हुआ। रानी ने सोचा और जो जिनको बेटा नहीं था, अब राजा हमें तो पूछता नहीं, पहले तो नौकरानी जैसे जैसे पैसे हमको कपड़े देता था, साबुन देता था, पूछता था जो ठीक है नहीं है, अब तो कुछ भी दिन में पूछता नहीं। ये लड़के के कारण इसलिए दिन भर वहीं पर पड़ा रहता है, इस लड़के को बीज दे दिया जाए, मर जाएगा तब फिर हम लोग का आदर करेगा, ऐसा नहीं करेगा। बस ऐसे ही जगत में होता है। आजकल देखते हैं ना, जो दिल्ली की गति में बैठे हुए हैं, ये देखा जैसे ये हमारी गति छीन लेगा तो उसको पहले मरवा देते हैं। औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को बहनों को तलवार से घात उतार दिया, विशेषकर के जितने मुसलमान शासक हुए उन लोगों ने ऐसा, बड़े अत्याचारी और क्रूर होते हैं। माँ बाप को भी जेल में बंद कर दिया शाहजहां को, अनंत में क्या नतीजा हुआ उसकी भी यही गति है। उसने कहा कि देखो मेरे बेटे हो, पिता का सम्मान करना चाहिए, तो बेटों ने कहा कि तुमने जैसा सम्मान किया अपने पिताजी का और अपने भाइयों का, हम भी ऐसे ही आपका सम्मान करना चाहते। जब वो 5 वर्ष का बाद तो उसको 20 दे दिया और वो बेचारा मर गया। उसको देख करके रानी हाय हाय करने लगी और उसके लाश को गोली में ले लिया, छोड़े नहीं। बहुत समझाने की लोगों ने चेष्टा की, नहीं समझी। राजा भी आकर के पागल हो गए, वो भी मूर्छित होकर के गिर। और उसी समय में फिर अंगिरा और नारद ऋषि उनके पास में आए। मैंने क्यों रो रहा है, कोई उत्तर दे। मैंने भाई क्यों रो रहा है, फिर तो बतलाओ। कोई नहीं बतला रहा, समय नहीं। भाई ये तो बतलाओ, ये बेटा तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, रोता किस लिए है? जिसको तुमने बेटा कहा वो तो यहीं पर पड़ा है, उसको कफन से उड़ा दिया है, बातचीत तो करो। तो वो बातचीत नहीं करता। क्यों तो नहीं बातचीत करता? तो इसलिए कि वो जहाँ चला गया है वहां से लौट करके फिर किसी को नहीं आना होता। अच्छा, तो तुम इस बेटे के लिए नहीं रो रहे जिसको तुमने खिलाया पिलाया, लाज प्यार किया, तेल लगाया, सन लगाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया, उसके लिए नहीं? जो आत्मा चली गई उसके लिए? हाँ, उसके लिए रो रहे। तो आत्मा काली थी या गोरी थी, कितना लंबा चौड़ा था, आत्मा का नाम क्या था, सोचो, इसको विचार करो। यदि इसको सुना तो भागवत सुना और इसको पालन किया तब, अभी यहीं से जाकर के महापंडाल से निकल गए बाहर से, अब अच्छी गए यहीं पर छोड़कर, तब तो गड़बड़ी हो जाएगी। एक ऐसा ही ब्राह्मण था, वो 80 वर्ष का बूढ़ा हो गया, उसको एक बेटा था, तो रोज दुकान में बैठता था। आज जब भागवत की कथा होती तो उसमें जाता था, 80 वर्ष तक भागवत सुना। तो उसका बेटा बड़ा हो गया तो बेटे को कहा कि बेटा देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दुकान पर बैठना, पास में कथा हो रही है वहाँ पर मत जाना, तुम अभी कच्चा है। ये कह करके 10-12 दिन के लिए बाहर चला गया। कहा कि मेरे पिताजी कहेंगे तुम वहां पर मत जाना, वहां पर कथा में क्या आती हो जरा देखूं। तो वहां पर चला गया। सुना के माता पिता का आदर करना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनका नाम करना चाहिए, भगवान की भक्ति का, भगवान की भक्ति का। अब उसके दिल में ये बात आ गई थी जैसे ये तो जरूर सुनना चाहिए, करना चाहिए। वो रोज रोज भगवान का नाम करता, रोज भगवान की कथा सुनने जाता, ठीक समय पर दुकान बंद कर देता और चला जाता। जब 10 दिन के बाद में उसका पिता आया तो उसने पूछा कि बेटा तू कहाँ जाता है तुम्हें भागवत कथा सुनने के लिए? ओ इसीलिए तो तुम्हारी गड़बड़ी हो गई, मैंने मना किया था ना, तुम अभी कच्चा है। मैंने 80 बरस तक भागवत की कथा सुनी, क्योंकि मैं जब सभागृह में से चलता हूँ तो वहीं पर भागवत छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर आकर के वो तो भागवत तागवत मैं नहीं जानता, और तुम कच्चे आदमी वहाँ से भागवत को लेते आए अपने मन में यहाँ, इसलिए तो गड़बड़ी हो गई। पहले पक्का हमारे जैसा बनो, सुनो किंतु वहीं पर छोड़ दो, पालन मत करो, तब तक ये भागवत सुनना, और नहीं तो तुम्हें बिगड़ जाएगा, और बिगड़ करके तुम भी भक्त हो करके और तुम घर छोड़ करके वृंदावन में भागेगा और घर संसार नष्ट हो जाएगा। तो वैसे आप लोग मत करेंगे, जो कुछ सुन रहे हैं यहाँ पर सुनेंगे, अपने हृदय में रख लेंगे, नहीं तो सभा को घर में छोड़ देंगे तो भागवत सुनना नहीं होगा। तो उसने बतलाया, देखो जो चला गया उसको तो तुमने देखा नहीं, अब तो नहीं तो क्यों रोता है? ऐसे तो लोग लाखों लोग मरते हैं। देखो एक दिन की बात, एक कबूतर और कबूतरी, उसके कुछ बच्चे थे, उनको छोड़ करके जंगल में दाना चरने के लिए गए। चरते 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 उन्होंने देखा कि जंगल की घासों में जमुन गंगा के किनारे, नदी के किनारे सुंदर सुंदर हरी हरी घासें हैं और उस पर मोती जैसे कण बिखरे हुए हैं चावल के। उन्होंने कहा कि प्रियतम चलिए हम लोग बच्चों के लिए और अपने लिए दाना चुने। कबूतर ने कहा कि मैं नहीं चलता, अरे बनिए का घर थोड़े है या कृषक का घर है जो यहाँ पर चावल का दाना होगा, ये जरूर बहेलिया ने यहाँ पर दाना लगाया है तुमको पकड़ने के लिए और हमको पकड़ने के लिए। वो मानी नहीं, फुर्र उड़ी और जाकर के खाने लगी। कबूतर कभी बुलाने लगे इशारे से, वो नहीं गया, और इतने में बहेलिया ने देखा कि ये कबूतरी तो खूब दाना चुन रही है, बस चावल खींच लिया उसके अंदर, अब तो रोने लगी। उसने देखा ये तो जाल में पड़ी है तो मरी, वो भी वहाँ आकर के वो भी विलाप करने लगा। जब विलाप करते करते तन्मय हो गया तो बहेलिया ने अपनी धनुष बाण उठाया और उसके कलेजे में ऐसा बाण मारा कि इस पार से उस पार हो गया, वो भी गिर पड़ी और ताली बजाता हुआ हंसता हुआ आया। जाल में पड़ी हुई कबूतरी को और बाहर में मरे हुए इस कबूतर दोनों को बांध करके पीठ पर ला करके चला गया और उसको रसोई बना करके खा गया। ऐसे देखो संसार में कोई नहीं है जो बचा है, जो जन्म लिया है मरेगा, आप लोगों ने जन्म लिया है मरना है। जो जस्ट जिनका जन्म निश्चित जातस्थ ही हुआ, जिनका मृत्यु निश्चित है उनका जन्म भी निश्चित है, और जिनका जन्म है उनका मृत्यु है, ऐसा कोई है? हाथ उठाओ तो जो मैं नहीं मरूंगा नहीं मरूंगी, दो वर्ष की बच्ची भी जरूर मरना, हमारे बाप दादे सब मर गए, हमको भी मरना है आज कल परसों में, इसलिए भाई भगवान का नाम करो यही रक्षा करो। हमें से कोई मर गया शोक में ऐसे व्याकुल हो गए जब मृत्यु आकर के उसको भी पकड़ लिया, अपना कर्तव्य नहीं किया, उनको कुछ ज्ञान हुआ तो जब हमारा उपहार की, मैंने भगवान का मंत्र दिया, भगवान का मंत्र दिया तो जब करके उनका उद्धार हो गया। थोड़े दिन बाद में उनकी स्त्रियां जिन्होंने पीठ किया तो वो भी नारद जी के पास मिली, हमने अत्याचार किया, हमने पीठ किया, हमारा कल्याण कैसा है? उन्होंने कहा कि तुम भी भगवान का नाम करो, वो भी भगवान का नाम करते इस जगत के पास। थोड़ी देर के बाद में ये चित्रकेतु महाराज जी कहीं जगत में घूम रहे थे हिमालय में, शंकर जी पार्वती जी को अपनी गोदी में लेकर और हरि कथा कर रहे थे ब्रह्मर्षियों की सभा में, लाखों ब्रह्मर्षि थे। उस समय में शंकर जी नंगे थे, सांपों का अलंकार पहन करके और सब लोगों को उपदेश दे रहे हैं, नारद जी को और सब ऋषि महर्षियों को, देवताओं को। चित्रकेतु महाराज जी आए वहाँ, हंसते हुए बोले कि मित्र, उनके मित्र थे, गुरु भाई हैं बलराम जी के, ये दोनों शिष्य हैं शंकर जी और ये चित्रकेतु महाराज। उन्होंने कहा तुम नंगे होकर के पार्वती जी की गोदी में लेकर के इस सभा में तत्वों का उपदेश कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मित्र को मित्र हसी दिलगी कर सकता है, पर पार्वती जी को रोष हुआ। उन्होंने कहा कि तू शंकर का तू गुरु है, उनको शिक्षा देने के लिए आया है, ब्रह्मा इनको उपदेश नहीं देते, नारद जी जैसे लोग बैठे हैं, अब तू आकर के इनको उपदेश देने लगा, जाओ असुर हो जाओ। तो वो हंसने लगे, एवं मस्तु ऐसा ही हो, जिनको भक्ति होती है भगवान में वो कैसी भी स्थिति में घबराता नहीं है, भक्ति किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं होती। शंकर जी कुछ रोकते बोले, आज मैंने देखा पार्वती जी ने इनको अभी संपाद दिया, किंतु ये जैसे कैसे ऐसे रहे। और कहा चित्रकेतु महाराज जी तो वैसे के तैसे रहे, तुम अपने रूप के अभिमान में इनको ऐसा भी संपाद दिया, ये चाहते तो तुम्हारे अभी संपाद को दूर कर देते थे, नहीं हम नहीं होंगे, तुमको ही अभिशाप देते, किंतु इन्होंने नहीं दिया। इनकी महिमा बहुत, इसलिए उन्होंने तो ले लिया। और ये कंग असुर हुए, वृत्रासुर हुए, वह युद्ध करें इंद्र से, इंद्र को करें हमें तू मार जल्दी से, इस असुर देश से शरीर का से भगवान का भजन नहीं होता, किंतु वज्र लेकर के भी नहीं मार पा रहे हैं। और समय ये भगवान की स्तुति करते हैं, कितनी सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं, हे प्रभो हमारा तन मन वचन आपने लगे, मैं आपका सब समय नाम ग्रहण करूं, अजात पक्षा मियो मातरम खदा। जैसे चिड़िया को दो बच्चे हैं, उनके पंख नहीं आए हैं, आंखें नहीं भी आई हैं, अपनी मैया के लिए चिल्ला रहे हैं, चिंता करते हैं, वैसे भगवान के लिए हम चिंता। जिस प्रकार से बछड़े अपनी मैया को दूध पीने के लिए डकारते हैं, उसी प्रकार से मैं उच्च स्तर से भगवान का नाम कीर्तन करूं। और जिस प्रकार से स्त्रियां अपने प्रियतम को सब समय सेवा करने के लिए उत्कंठित रहती हैं, वैसे ही मेरा मन आपके चरणों में लगता है। तीन प्रकार से भगवान का नाम कीर्तन, उन्हीं का नाम चिंतन करना और उन्हीं का नाम स्मरण। विशेष करके गोपियों का जैसा भाव है, ऐसे कृष्ण को प्रियतम मान करके हमारा मन आपके चरण। इंद्र देव कर कहते हैं कि असुर कहा, इस स्थिति में भगवान का स्मरण कर रहा है, उनकी गति तय हुई, उनका शरीर दूर हो गया और फिर चित्रकेतु महाराज के रूप में भगवान का भजन कर। इसलिए यदि भक्ति का प्रारंभ कर दिया, नाम श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन कोई भी कुछ भी किया, और यदि भगवान के प्रति थोड़ी सी भी ममता और आसक्ति हो गई और उनका भजन कर दिया, उसका विनाश कभी नहीं। नया अभिक्रमणास्त्र पत्यवायु नहीं, कभी भी इसमें पत्यवाय नहीं होता है, बस वैष्णों के प्रति, साधुओं के प्रति, गुरु के प्रति अपराध है, अन्यथा कोई पाप भी हो जाए उसका कुछ नहीं बिगड़ता, थोड़ी देर के बाद में फिर वो पुनः ऐसे होकर के भगवान का भजन करता है। प्रहलाद महाराज जी के उपाख्यान में भी ऐसा ही दिखलाया, प्रकाश के प्रहलाद महाराज जी का भी ऐसा ही। प्रहलाद महाराज जी के संबंध में इन्होंने बतलाया, जो उपदेश बाकी रह गया थोड़ा सा, उन्होंने असुर बालकों को यह उपदेश दिया कि देखो कुमार आचरित प्राप्ति, बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की, मनुष्य भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना कठिन नहीं है। असुर बालकों ने कहा जो अभी से क्या जरूरत है, जब बड़ा हो जाएंगे तो बड़ा होने के पहले यदि मर गया तो कब भजन करेगा, इसे बचपन से, तो अभी हम खेलेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे विवाह करेंगे बच्चे होंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, तो बूढ़ा होने के पहले या तो मर गया, कमर भी तो सीधी नहीं होगी बूढ़े होने पर, दम खुलेगा उस समय तो भगवान का भजन कैसे करेगा, बचपन से न तत् प्रयास होकर तब जाता आयु बरा न तथा बिंदते क्षेम मुकंद चरणम, जिसको संसार में दुख भोगना नहीं चाहता, किंतु दुख अपने आप आ जाता है। कोई दुख संसार में नहीं चाहता, अपने आप दुख आता है, सुख भी अपने आप आ जाता है। इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप जरूर आएगा। बहुत से लोग हैं कि सांप तो कोई काम नहीं करते, हम लोग भी अपने खाने के लिए भोजन के लिए क्या करते हैं, इसलिए सुख होगा तो अपने आप आएगा, इसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। भगवान का भजन करो। देखो 100 वर्ष की आयु में 20-25 वर्ष पढ़ने लिखने और किसी एक विषय में एक्सपर्ट होने में लग जाते हैं, और उधर का 20 वर्ष 80 से 100 वर्ष में एकदम जड़ हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते। 40 वर्ष तो ऐसे गया, रह गया 10 वर्ष। इस 10 वर्ष में विवाह करना, बच्चों का परवरिश करना, कितने तरह के आपत्ति विपत्तियां होती, इसी में चला जाता है। भगवान का भजन आदमी कब करेगा? अपने छोटे छोटे सुख लाते हुए बच्चों को, अपनी प्यारी स्त्री को चैतन्य महाप्रभु की भांति कौन छोड़ करके जाएगा? अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ करके कौन जाएगा? भगवान का भजन करना बड़ा कठिन है, इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन करो। ये 10 वर्ष तो हंसते खेलते हुए चले जाएंगे, इसलिए मृत्यु और संभावी होता है। इसलिए सदगुरु प्राप्त करो, उसकी सेवा करो और भगवान का नाम करो, उनकी कथाओं को स्मरण करो, यही जगत में सार है। इसके अच्छा प्रहलाद महाराज जी को बचपन में कैसे ज्ञान हो गया? ब्राह्मण के बेटे थे, पूर्व जन्म में बड़े अच्छे लड़के थे, अच्छे घर में खानदान में शादी हुई। कुछ दिनों के बाद में एक बेस्या को इन्होंने देखा, उसकी फेर में पड़ गए, अपना सारा अर्थ उसको दे दिया। जब सब ले लिया तो इनको वहां से भगा दिया, बहुत अपमान किया, अपना प्राण छोड़ने जा रहे थे कि अब हम कहाँ जाए, इसने हमारा इतना अपमान किया, हमारा सर्वस्व ले लिया। जंगल में गए, वर्षा होने लगी, भेड़िए बाघ भालू गर्जन करने लगे, रात ठंडी रात कपाती हुई थी, एक मंदिर में ठहर गए। प्राण का तो मोह होता ही है, और वो लड़की भी बेचा भी रात में इनको खोजती 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 वहीं पर आई, वो भी एक कोने में दुबक गई। जब सवेरा हुआ तो देखा, अरे रात भर सोए नहीं, कुछ खाया नहीं, देखा यह नृसिंह जी का मंदिर है, नृसिंह मंदिर में। और उसी दिन नृसिंह का चतुर्दशी का व्रत था, किंतु ये लोग जानते नहीं थे। अपने आप झगड़ने से उपवास हो गया, रात भर सोए नहीं दुख से। इसका यह फल हुआ कि महाराज ये प्रहलाद जी माता के गर्भ रहे, नारद जी मिले, इनको उपदेश दिया, इसलिए बचपन से आए। इसलिए एकादशी का उपवास, रामनवमी का जन्माष्टमी का उपवास, नहीं जानते हो तभी कुछ फल होगा, किसी से ऐसी सुकृति होगी कि भगवान के चरण मिल जाएंगे, और इससे कोई बनी गति। इसलिए सहज रूप में ही इन सब का करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, घर का काम करते हुए, इसी में हमारा कन्या, यही भागवत का उपदेश है। अब अगले कल सब वर्णों में आदरणीय और गुरु है। यदि कुछ न भी करे तो भी लोगों की धारणा है, इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर वो सबका आदरणीय और सबका श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसे हमारे धर्म में कुछ कुछ ऐसी बातें हैं। भक्त यदि नीचे के कुलों में उत्पन्न हो, शूद्र हो, यहाँ तक कि अंतर जाति में भी गौम समाज के रूप में भी यदि अवतरित होता है और उसमें भक्ति है, वो ब्राह्मणों का भी गुरु है। शास्त्र में ऐसा है, नारद जी की जाति नहीं देखनी है। व्यास जी की जाति नहीं देखनी है, वो परम भगवत भक्त थे। कृष्ण वाले कुल में जन्मे थे, जादव कुल में जन्मे थे, ये विचार नहीं है। वो तो स्वयं ब्रह्म है, उनके भक्त भी जाति कुल से ऊपर होते हैं और आदरणीय होते हैं। इस चीज को समझाने के लिए ही भगवान ने प्रेरणा देकर के दुर्वासा जी को भेजा महाराज अम्बरीश के यहाँ। दुर्वासा जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, यहाँ तक कि भगवतार भगवत अवतार भी थे, वे शंकर जी के अंश से पैदा हुए थे। दुर्वासा जी अत्री के गर्भ से पैदा हुए थे और उनकी मैया का नाम अनुसुईया जी था। इतने उच्च कुल में जन्मे थे और बड़े भारी योगी थे, उनको ब्रह्मर्षि कहा गया। किंतु वो एकादशी करते थे कि नहीं और एकादशी का महत्व जानते थे कि नहीं, ये हमें पता नहीं। भगवत जी को ऐसा नहीं लिखा था। उन्होंने सोचा मैं ब्रह्मभक्ति हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, हमारे पिताजी अत्रिय मैया अनुसुईया है, मैं ब्रह्म तक जानता हूँ और जिसको जो कह देता हूँ वो हो जाता है। उन्होंने अम्बरीश महाराज जी को साधारण एक भक्त समझा, किंतु वो नहीं जानते थे कि हमसे भी श्रेष्ठ हैं अम्बरीश महाराज। क्षत्रिय कुल में होने पर भी, राजा के होने पर भी, ये हमसे श्रेष्ठ है, जिस चीज को अनुभव नहीं कर पाते थे वो क्या अभी बहुत से लोग। इसलिए भगवान ने प्रेरणा देकर के महाराज अम्बरीश के घर पर उनको भेजा, जाओ आज जरा ये विचार हो कि ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म भक्ति बड़ा है न भक्ति या भक्त बड़ा है। वहां पर गए, द्वादशी का दिन था, इन्होंने तो भक्त महाद्वादशी का व्रत किया था अम्बरीश महाराज जी ने, पारण करने जा रहे थे। यदि समय पर दूसरे दिन पारण न किया जाए तो एकादशी का व्रत नष्ट हो जाता, उसका फल चला जाता। इसलिए द्वादशी के दिन एकादशी व्रत के बाद में या द्वादशी के व्रत में के बाद में पारण करना होता है एक समय के भीतर। द्वादशी के अंतर्गत ही पारण होना चाहिए, त्रयोदशी नष्ट, और उस दिन सूर्योदय के बाद में थोड़ी सी 24 मिनट के करीब में केवल द्वादशी थी। इसके बाद में व्रत समाप्त, इसके बीच में कुछ ठाकुर जी का भोग के दुर्वासा जी इसी समय में पहुंचे। ये देखकर के बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि महात्मन आज तो हमारा परम सौभाग्य है कि आप जैसे ऋषि भक्ति आ गए ब्रह्मर्षि, आज आप हमारे घर में अतिथि होकर के ठाकुर जी का प्रसाद अन्न ग्रहण। मैं भी द्वादशी का व्रत महाव्रत रखा है, मैं भी अब आपके लेने के बाद में मैं पारण करूंगा। मैंने ठीक है, मैं जमुना में स्नान करके आता हूँ। और उन्होंने देरी लगा दी, वो समय भी पार होने लगा। अम्बरीश जी ने सोचा कि इस ब्रह्मभक्ति का आदर किया जाए अथवा द्वादशी रूपी भक्ति का आदर किया जाए। यदि ब्राह्मण को खिलाए बिना मैं कुछ ले लेता हूँ तो ब्राह्मण की अवज्ञा हो जाएगी और उससे हमारा कुछ अनिष्ट हो सकता है लौकिक। किंतु द्वादशी का पारण हम समय पर नहीं करते हैं तो हमारा पारमार्थिक भक्ति की हानि होगी और हमारा जन्म जन्म के लिए मैं दोषी हो जाऊंगा भक्ति के चरणों में। इसे भक्ति नहीं छोड़ना है, भले ही जो कुछ हो जाए, लौकिक हमारा कुछ अनिष्ट हो जाए कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा, किंतु भक्ति हम हानि नहीं देने होने देंगे। इसलिए उनके आने के पहले ठाकुर जी का चरण अमृत का केवल पानी ले लिया, जिससे व्रत भी रहे, पारण भी हो जाए, ऋषि का सम्मान भी रह जाए, सब कुछ ठीक हो, किंतु भक्ति के चरण में अपराध न हो। उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा जे ऋषि तो पानी ले लिया, ओ हमारा अनादर किया ब्राह्मणों का, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। उन्होंने अपनी शाम पास देने की चेष्टा की, आकर के तुम हमारा आदर तुमने नहीं किया, मैं एक श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि हूँ, तुम एक राजा हो साधारण शक्तियों में, और थोड़ा सा भक्ति कर लिया तो पाखंडी बन गया, और इसी के नाते ब्रह्मर्षियों का ब्राह्मणों का आदर नहीं करता है। जाओ, एक केस टुकड़ा निकाला अपनी जटा का और तोड़ करके फेंक दिया, जाओ उसे भाई जला डाल। महाराज अम्बरीश जी हाथ जोड़ कर सुदर्शन भक्तों की रक्षा करता है। बस उसने एक सेकंड के अंदर में उसके प्यार राक्षसी को जला दिया और इनको भी ब्रह्मर्षि को जलाने के लिए आगे बढ़ा। नकल जी ये क्या हो गया, ये सुदर्शन जी इस भक्त की रक्षा कर रहे हैं, भगे और ये नहीं भगे कहीं। घूमते घूमते शंकर के यहाँ गए, ब्रह्मा के यहाँ गए, सब जगह कोई नहीं रक्षा की, भगवान के यहाँ गए, भगवान का जो मैं रक्षा नहीं कर सकता, जाओ अम्बरीश के यहाँ। अंत में लाचार होकर के वहां पर क्या तात्पर्य, ब्राह्मण का आदर है यदि भक्ति उसमें है, और ब्राह्मण होकर के भी यदि उसमें भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति आदर नहीं, एकादशी इत्यादि का आदर नहीं करता, भगवान का नाम नहीं करता, तो ब्रह्म ज्ञान बेकार है और वो ब्रह्म योगी और वो सब बेकार के हैं। चतुर वर्णम व्या सिस्टम गुण कर्म विभाग, ये गुण है, भक्ति का गुण नहीं है तो ब्राह्मण चंडाल श्रेष्ठ है जो कि भगवान का भजन करता है। उसे महाराज विदुर जी बहुत श्रेष्ठ है, भगवान के भक्त है ना। गोपियां गुर्जरी जानते हैं ना, गुर्जर एक होता है अहिरों में गुर्जर, तो वो गुर्जर क्या कहलाती है, वो शूद्र कुल में मानी जाती है। बतलाओ तो ब्रह्म इत्यादि सभी उन गुर्जरियों के चरण की स्तुति की वंदना करते हैं उद्धव इत्यादि, और कृष्ण स्वयं उसके सामने ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मर्षि सज बेकार का, ये चीज भागवत में दिखता है, भगवान ने इसको शुद्ध करके दिखता है, ये भागवत में जो दिखा गया वो परम सत्य है। नीच से नीच कुल में भी जन्म लेने पर यदि कोई भगवान का नाम करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान की भक्ति करता है, एकादशी करता है, तो वो श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, और ब्रह्मज्ञानी होकर के भी भक्ति का आदर नहीं करता, भक्तों का आदर नहीं करता, एकादशी पालन नहीं करता, तो वो दूर से जिस करती है उसको कोई आदर नहीं, लौकिक संबंध से नहीं देंगे, भक्ति रहती है व्यक्ति भक्ति का आदर करते हैं, ये चीज। अभी शुभानंद जी अपने प्रसंग को पूरा करें, अभी जन्म की लीला आएगी, इसके बाद में कृष्ण लीला के संबंध में हम लोग कुछ इसके बाद
la 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 la
कृष्ण का जन्म हुआ। कल कथाएं होंगी और तब आज मैं इसके संबंध में दो एक बातें बतलाना चाहता हूं। आकाशवाणी हुई रे कंस देवकी का आठवां पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी हुई कंस ने सुना, सुनकर के आकाशवाणी पर कंस को विश्वास हुआ कि नहीं, आधा विश्वास किया। आकाशवाणी ने कहा ये आठवां पुत्र इसका जरूर तुम्हें मारेगा। अब ये सोच रहा है कि आकाशवाणी ने ये तो कहा किंतु मैं इसको झूठा बना दूंगा, मैं देवकी को ही मार डालूंगा तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे बांसुरी कहां से रहेगी, यदि बांसुरी ही न रहे तो देवकी को ही खत्म कर दूं तो आठवां गर्भ किसका होगा, वो होगा ही नहीं, फिर हमको नहीं मार पाएगा। ये आसुरी का विचार है। भगवान की बातों पर, शास्त्र की बातों पर, गुरु की बातों पर वो विश्वास नहीं करते। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं देवता और एक होते हैं असुर। कंस के जितने पक्ष वाले हैं सब असुर हैं, कृष्ण के पक्ष वाले जितने हैं सब देवता हैं। भगवान का जो भजन करते हैं, भगवान को मानते हैं, वेद शास्त्र भागवत और गीता और रामायण पर जिनको विश्वास है वो तो देवता हैं। जो लोग वेद उपनिषद भागवत पुराण भगवान के नाम पर और भक्तों पर विश्वास नहीं रखते, इनका विरुद्ध आचरण करते हैं, वो हैं असुर। उस समय कंस इत्यादि कुछ लोग असुर थे। राम के समय में रावण असुर था, प्रहलाद जी के समय में हिरण्यकश्यपु ये सब असुर थे, और कलियुग में कुछ लोग ही देवता हैं, बाकी सब अधिकांश लोग असुर हैं। मैं सोच रहा था जैसा आयोजन हुआ है यहाँ पर कम से कम तो 10-20 हजार आदमी जरूर आएंगे, इसलिए कि ब्रज से लोग आए हैं, संत लोग कथा सुनेंगे, किंतु कुछ मिस्ट में ये लोग ही यहाँ पर आए। क्या पुणे में 10-20 लाख आदमी नहीं है, उसमें 400-500 आदमी भी नहीं आ सकते थे? सुनाई में नहीं, सारे संसार की यही बात है। इसलिए आजकल कली काल में अधिकांश असुर हैं, देवता बहुत कम हैं। जो भगवान का नाम करते हैं, गीता पाठ इत्यादि करते हैं, भागवत की बातों पर विश्वास रख करके भगवान का भजन करते हैं, असुर लोग महामाया का भजन करते हैं, दुर्गा काली इत्यादि का, वो भी भगवान की ही शक्ति है। अभी बतलाया भागवत की ही बातें बतलाया, किंतु उनमें तरह तरह की कामनाएं होती हैं और वो लोग अंत में दुख ही पाते हैं। भगवान का भजन करने वाला गोलोक वृंदावन में परम धाम को जाता है, जहां से लौट करके आना नहीं होता। कंस की क्या दुर्गति हुई ये देखो, रावण की क्या दुर्गति हुई, हिरण्यकश्यप जैसे व्यक्ति को जो दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, उसे किसी के द्वारा नहीं मरेगा, मतलब उसकी एक क्षण में क्या गति हो गई। इसलिए उन लोगों को कभी भी सुख और शांति नहीं होती जो भगवान का भजन नहीं करते, असुर लोगों को। आजकल हमारे देश में ही क्या, संसार में ये देख रहे हैं, जो हमारे राष्ट्र के ऊपर बैठे हुए हैं वही यदि षड्यंत्र करें, कोटि कोटि रुपए ले लें, चोरी करें, बेईमानी करें, उस राष्ट्र का क्या होगा। ये जितने हमारे राष्ट्र के कर्णधार हैं प्राय सब असुर हैं, नहीं तो ऐसा बिगड़ जाता हमारा देश। मैं तो समझता हूं कि हमारे साधारण कहे जाने वाले धार्मिक व्यक्तियों में से लोग यदि वहां पर राष्ट्र में राज्य करते, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते, आज ये देश की दुर्दशा नहीं होती, यदि गीता भागवत रामायण को जानते। गीता रामायण का पालन नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, भगवान से नहीं डरते, आज इसलिए ये हमारे राष्ट्र की या दूसरों राष्ट्रों की दशा है। इसलिए ये सब अशुभ चित्त वृत्ति के लोग हैं। भगवान का थोड़ा सा भी डर होता, जब मैं ऐसा चोरी करूंगा तो भगवान हमें देखेंगे, जान लेंगे और हमें पीस करके शत्रु बना डालेंगे, हमारा सर्वनाश कर देंगे, इस लोक और परलोक में हमें दुख भोगना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हमारे भारत में से अभी भी लोग हैं जो धर्म से डरते हैं, भगवान का भजन करते हैं, एक पैसे की कोई चीज भी नहीं ले सकते, कोटि कोटि रुपयों को भी नहीं छू सकते, माता पिता का आदर करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, किंतु उन लोगों को कोई पूछेगा नहीं, उन लोगों को वोट में वोट नहीं पड़ेंगे। जो जितने प्रकार के बदमाश चोर डकैत हैं, ऐसे लोग हमारे रक्षा मंत्री होंगे, ऐसे हमारे राष्ट्र के कर्णन ये सब होंगे, तो देश का क्या होगा। इसलिए इसमें दिखलाया, जिस राष्ट्र में गायों का आदर नहीं है, जिस राष्ट्र में गीता भागवत का रामायण का पुराण का आदर नहीं है, जिस राष्ट्र में माता पिता बूढ़े लोगों को सम्मान नहीं है, गायों का सम्मान नहीं है, शास्त्रों का सम्मान नहीं है, वो रसातल दे देते हैं। आज हम यही सब आप लोग थोड़े से संख्या में होने पर भी आप लोग भगवान का भजन मत छोड़ेंगे, थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, जैसे देवकी और वसुदेव को हुआ, किंतु पीछे क्या हुआ, धर्म ने और भगवान ने उनकी रक्षा की। कंस चाहता था यही आकाश पानी को हम झूठा बना दें, मारने के लिए गया, सोचा था जो मैं इसे मार डालू, और वसुदेव महाराज जी निश्चिंत थे ये नहीं, कदापि नहीं मार सकता, जितना उछले कूदे मार नहीं सकता, क्यों, आकाशवाणी ने कहा है इसका आठवां गर्भ उसे मार गया, ये जरूर होगा ही, इसलिए इसको थोड़ा सा बुझाया जाए, समझाया जाए, या कोई उपाय किया जाए, किसी हालत से ये मार नहीं सकेगा। यह है भगवत भक्त, वो भगवान की बातों में, धर्म की बातों में विश्वास रखता है, भगवान के नाम पर उनको पूर्ण विश्वास रखता है। धर्मो रक्षति धार्मिकम्, जरूर धर्म धार्मिक की रक्षा करेगा। इसलिए ये कंस जितना भी उछले कूदे सब कुछ करे, देवकी को नहीं मार सकता, इसलिए कहा अरे आप क्या कर रहे हैं, इतने समझदार होकर के मरना तो आज न कल न परसों मरेंगे, देवती का यह पुत्र यदि होगा उत्पन्न या न हो आप बचे रहेंगे, आज तक कोई बचा रहा जगत में जिसने जन्म लिया, मरना तो है, इसके हाथ से नहीं तो अपने आप मरेंगे आप, सभी लोग का ऐसा ही है, इसलिए इससे डरने की क्या जरूरत है, मरना तो आज या 100 वर्ष के बाद में मरना जरूरी है। इस लड़की की हत्या क्यों कर रहे हैं, ये तो आपकी बेटी के समान है, आपकी बहन है, इसका जो यदि लड़की हुई तो मैं इस लड़की की शादी आपके लड़के के साथ में कर दूंगा, आप चिंता मत करें, मैं सारे लड़कों को बच्चों को जो कुछ जन्मेगा आपको दे दूंगा, अब मार डालना जो कुछ कर। अभी क्यों मारते हैं? उन्होंने सोचा यदि मारेगा तो नहीं, यदि मान लिया इसको लड़का ही नहीं हुआ तो क्या करेगा, आ लड़का हुआ तो ये जब मारेगा तो ये क्या कर सकेगा, ये रक्षा नहीं कर सकेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इसे मारो मत, लड़का होगा लड़के से डर है, हम तुमको दे देंगे तुम मार डालना। उसने दिन पास कर, इसके बाद में कृष्ण का जन्म, रात में क्यों जन्म हुआ और 8 महीने में ही क्यों जन्म हुआ, बतलाया बच्चे ने, ब्रह्मचारी जी ने बताया। रात में सब लोग सो जाते हैं, कंस को छलने के लिए यदि 10 महीने पर बच्चा पैदा होता है ये उसको पता था, इसलिए सोच रहा है तेज तो निकल रहा है, बच्चा तो होगा, गर्भ है इसको, किंतु अभी 2 महीने की देरी है और वो भगवान ने उसको धोखा दे करके, उसको बहाना बना करके 2 महीना पहले ही गर्भ से निकल आए। रात इसलिए कि सब लोग सो रहे हैं, वर्षा हो रही है, आंधी चल रही है, कुछ कुछ पहरेदार भी बड़े सुख से सो गए। ऐसी स्थिति भगवान ने पैदा कर दी, सब अपने घरों घरों में कवाट बंद करके वर्षा के कारण और रात के कारण भीतर में चले। कंस भी निश्चिंत होकर के सो गया और ठीक उसी समय में इनका जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ? दो प्रकार की बातें हैं भागवत में दिखते हैं, ये देवकी और वसुदेव जी, कश्यप और अदि थे ना, उन्होंने मांगा था जे बेटा हो तो आपके समान, भगवान के समान। भगवान ने कहा था भाई हमारे समान तो जगत में कोई है नहीं, तो मैं ही तेरा बेटा होकर के आऊंगा, क्यों आऊंगा? भगवान जानते हैं, भगवान का जन्म का बहुत सा कारण है, जिसमें साधारण रूप में ये कारण है कि जब जब जगत में अधर्म होता है, धर्म की हानि होती है, साधु संतों गैयों पर जो कुठाराघात करते हैं उसकी हानि करते हैं, तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए वो अवसर है, दुष्टों का दमन करना, ये साधारण नियम है। कृष्ण इसलिए जन्म नहीं लेते, क्यों? यह काम तो उनके अंश के अंश के अंश के अंश के चरण की धूली से ही हो जाएगा, महाविष्णु इत्यादि ही इस काम को कर देंगे, विष्णु ही कर देंगे, कृष्ण को इसके लिए अवसर, उनकी इच्छा मात्र से ही महाविष्णु जो गर्भोदशाय में शयन करते हैं वो भी ये काम करते हैं, क्रोधशाय में रहने वाले वो विष्णु भी करते हैं। फिर इनका जन्म ऐसी लीलाओं को प्रकट करना है इसी बहाने जो जगत में कभी भी अवतरित होती, ऐसी रस लीला रसमय लीलाएं को करेंगे, बच्चे जैसा जन्म लेंगे, मट्टी खाएंगे, सखाओं के साथ में खेल करेंगे, यशोदा जी का स्तनपान करेंगे, यशोदा जी उनको मटकी तोड़ने के लिए उन्हें ओखल से बांध देंगी और गोपियों के साथ में रास इत्यादि करूंगा, जब वो रुक जाएंगी तो मैं उनको मनाऊंगा, मैं उनके पहिया पढ़ूंगा, ऐसी लीला प्रेम की दिखलाऊंगा जिससे जगत के लोग स्तंभित हो जाएंगे और मुझको उसी रूप में हमारा भजन कर, ये प्रधान उद्देश्य। और अनुसंगिक रूप में युग धर्म की प्रतिष्ठा करना, ये ये कृष्ण का काम नहीं है, उनका वो परम रसिक है। रस का आस्वादन करना ही, विविध प्रकार के भक्तों का रसास्वादन करना ही कृष्ण का काम एकमात्र है। इस काम के लिए वो मथुरा में नहीं, गोकुल में यशोदा देवी के गर्भ, जिन्होंने यशोदा मैया का बंधन स्वीकार किया था, मक्खन की चोरी की, मिट्टी खाई, गोपों के साथ में गौएं चराई, रास विलास किया, ये कृष्ण गोकुल में जन्मे। और उनका जो कृष्ण का अंश है, जिसको वासुदेव कहते हैं, वासुदेव कृष्ण, ये मथुरा में प्रकट भए, जन्म नहीं लिया, बच्चे होकर के नहीं आए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज होकर के खड़े हो गए, ये वासुदेव कृष्ण का। साधारण आदमी इसको नहीं समझेगा, किंतु फिर भी शास्त्र में इन चीजों को बताया गया। आप लोग इस बुद्धिमान एक चीज को समझेंगे, भगवान के दो कार्य, असुरों को विनाश कर धर्म की प्रतिष्ठा करना, जो धर्म की प्रतिष्ठा करना, ये भगवान का अपना काम है, ये उनके अंश का काम है। इसलिए भगवान कृष्णचंद्र जो स्वयं भगवान है, जिनको कहा गया है चांद कला पुंसा कृष्ण तू भगवान, साधारण नर की भांति लीला किया, सुबह शाम सुंदर बंसी बजाई और जगत के सारे लोगों को मोहित कर दिया। इनका जन्म यशोदा जी के गर्भ से गोकुल में ठीक आधी रात, जबकि वसुदेव देवकी को आधी रात के समय में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वहां पर खड़े थे। कैसे? 16 वर्ष की अवस्था वाले, भाई 16 वर्ष का बेटा होता है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म रहता है, लंबे लंबे घुघराले के समस्त अलंकारों से परिमंडित, षड़ैश्वर्य परिपूर्ण, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिना कृष्ण किसी के बेटे नहीं होते, नारायण किसी के बेटे नहीं है, वो वासुदेव के रूप में वो प्रकट, ये कृष्ण के अंश हैं। इसलिए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए, इसलिए उनको याद दिलाने के लिए, मैं तेरा बेटा होकर के आया, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं भगवान हूं, जो पहले जन्म में हमने तुमको कर दिया, अब मैं कंस का वध करूंगा। इसलिए यहां पर जो प्रकट हुए भगवान, इन्होंने ही कंस का वध किया, ये कृष्ण के अंश हैं। और जो स्वयं कृष्ण हैं, वे भक्त रसामृतमूर्ति हैं, अखिल रसामृतमूर्ति हैं, परम सुंदर हैं, बंसी धारण किए हुए श्यामल अंग के, ये सब समय किशोर उम्र होती है, ये वृंदावन कभी छोड़ करके नहीं जाते, मथुरा में भी नहीं। हम लोग दोनों को एक मान लेते हैं, एक है भी तत्वतः, किंतु एक साथ में कृष्ण 10-20 लाख जन्म ले सकते हैं। गोपियों के साथ में नृत्य करते हुए कृष्ण कोटि कोटि गोपियों में, अंततः 16,000 गोपियों में 16,000 धारण कर लिया ना, तो एक जगह एक समय में ही कृष्ण दो जगह क्यों नहीं जन्म ले सकते। इसलिए एक रूप में ऐश्वर्य रूप धारण किया, भगवान के रूप में, पूर्ण भगवान के रूप में, यहां माता देवकी के घर पर, और परिपर्णतुम रूप में यशोदा मैया के लाला बनकर के जन्म लिया। कैसे? तुम्हें शाम सुंदर, नंगे केश नहीं, बांसुरी भी साथ में नहीं लिए हुए, ऐसे छोटे से शिशु और रोते हुए वहां पर जन्म लिया। और उनके साथ ही साथ में 15 मिनट के बाद में एक योग माया भी, जिनको बतलाया गया, उन्होंने जन्म लिया योग माया। दो जमज बेटे, एक बेटा एक बेटी, बड़ा वाला हुआ वो बेटा, और उसके आध घंटे बाद 15 मिनट के बाद में यमज संतान के रूप में योग माया जी पैदा हुई। ये परिपूर्णतम यशोदानंदन कृष्ण है, उनके अंश देवकी के घर पर शंख चक्र गदा पद्म लेकर, ये ऐश्वर्य पूर्ण है, सर्वंतर्यामी है। और वहां वाले कैसे हैं? ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों से परिपूर्ण है। गोपियों के साथ में कृष्ण ये जो है वो नित्य नहीं कर सकते, मट्टी नहीं खाएंगे, इनका कोई माता पिता नहीं है इसलिए प्रकट हो गए, इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए मथुरा में ये रहते हैं, द्वारका में रहते हैं, ये इनकी जितनी भी लीलाएं हैं द्वारका और मथुरा की और महाभारत का संग्राम इत्यादि, ये कृष्ण के अंश वासुदेव कृष्ण जी चतुर्भुज नारायण ये मुझे। आप ब्रज में जो रसास्वादन किया वो कौन? यशोदानंदन नंद नंदन राधाकांत राष्ट्रीहारी, वो गोलोक वृंदावन में ऐसे ही रहते हैं दुर्ल श्याम सुंदर, और वहीं से इस जगत में अवतरित होते हैं, इनको अवतार। और ये बैकुंठ में रहते हैं या द्वारका मथुरा में रहते हैं, वहां से ये द्वारका मथुरा में ये होते हैं। दोनों अपने अपने स्थान में नित्य हैं, दोनों एक होते देवी, इतना दोनों एक होते हुए भी तत्वतः रस की दृष्टि से दोनों में वैशिष्ट है, इसलिए बतलाया सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी से ये कथा कर रहे हैं। परीक्षित इंद्र प्रस्थ या हस्तिनापुर के व्यक्ति, कौरव पांडवों के वंश में है, पांडु के वंश में, पांडु जी की पत्नी का नाम कुंती है। ये कुंती जी वसुदेव जी की अपनी खास बहन है और उनके बेटे हैं ये कृष्ण। और परीक्षित महाराज जी अर्जुन की का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का ये पुत्र है, इसलिए द्वारका से इनका संबंध है। आ रहा है समझ में? कृष्ण तो वसुदेव जी के लड़के, और परीक्षित महाराज जी कौन है? कृष्ण जी की बुआ कुंती है, कुंती का पुत्र अर्जुन, और अर्जुन का विवाह हुआ है सुभद्रा से, उस सुभद्रा से और अर्जुन से पुत्र हुआ अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित, इसलिए जादुओं के साथ में इसका संबंध है परीक्षित महाराज जी का। इसलिए परीक्षित जानते हैं कि मैं जादुओं के वंश में नहीं हूं, कृष्ण से हमारा संबंध है इस कृष्ण से, इसलिए महाराज सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को प्रसन्न करने के लिए ये कहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अरे तुम्हारी बुआ जी थी उन्हीं के भाई का ये लड़का कृष्ण है, इसलिए तुम्हारा उसने तुम्हारे गर्भ समय में तुम्हारी रक्षा की, इसलिए वो कहते हैं कि ये देवकी के से पैदा हुआ। वो जो गोकुल में जो जन्म हुआ इसको छिपा दिया, उसको कहते तो कहते जैसे उससे तो कोई संबंध नहीं है परीक्षित का, इसलिए परीक्षित को प्रसन्न करने के लिए ऊपर से कहते हैं। किंतु जब भावावेश में हो गए और जब कथा का वर्णन करने में तो भावावेश समाप्त हो गया और उनके मुख से अपने आप निकल गया, नंदस्तु आत्मजुद्धन ने जाता वहा बोला, मुख से निकल गया क्या? नंदस्तु आत्मजुद्धन ने, नंद भी आत्मज उत्पन्न होने पर, आत्मज किसको कहते हैं? आत्मा वही जाए तो पुत्र, आत्मा से ही पुत्र के रूप में वही व्यक्ति जन्म ग्रहण करता है, पिता ही। इसलिए ये बस ये कृष्ण नंद बाबा के आत्मज हैं, इसलिए ब्रज में इन्होंने जन्म लेने पर बधाई हुई यहां और संस्कार हुआ। बेटे का संस्कार माने किसको कहते हैं? जात संस्कार। माता का पुत्र के साथ में नाड़ी छेदन होता है, यदि मथुरा में जन्म होता तो नाड़ी छेद तो वहां होता, वहां पर नाड़ी छेद नहीं हुआ। नाड़ी छेद कहां हुआ? गोकुल में नाड़ी छेद हुआ। और औरतों ने गाना आरंभ किया और लोगों ने गाना आरंभ कर दिया, नंद को आनंद भयो
जय कन्हैया।
इसलिए वहां पर उनको जन्म हुआ, कृष्ण का वहां पर जन्म हुआ, छोटे से बच्चे के रूप में जन्म हुआ और सारी लीलाएं की। यही नहीं, नखल गोपिका नंदनो भवान, एक जगह नहीं हजारों जगह महाभारत के दूसरे में हरिवंश इत्यादि में ये बतलाया गया कि देवकी नाम भी यशोदा का था। इसलिए देवकी पुत्र भी यदि कह दिया तो कोई हर्ज नहीं, यशोदा के लिए। और भी बतलाया, देवकी का जो पुत्र ये कृष्ण बतलाया गया, ये भी देवकी जन्म बादौ जयति जन निवास हो देवकी जन्म बाद, ये लोग कहते हैं किंतु असल में ये यशोदा जी के पुत्र हैं। देवकी जी को कृष्ण को दूध पिलाने को कितनी बार मौका मिला, एक बार भी नहीं जन्म लिया। जन्म तो लिया वहां मथुरा में, किंतु देवकी का स्तनपान नहीं किया, चले गए। जब लौट करके आए कंस को मारा तब देवकी जी देख के रह गई, हाथ जोड़ करके सौ आरंभ किया, कहे मैया तू हमें दूध नहीं पिलाएगी। पुत्र का भाव उनमें जागृत किया, मैं तेरा बेटा हूं, और कह करके उनके चरणों में गिर गए। उस समय देवकी को वात्सल्य भाव कुछ आया। उसके बाद में अपने पुत्रों को मंगवाया कृष्ण से, पुत्र ने उनके मरे हुए छह बेटों को ले आए। थोड़ा सा कृष्ण ने देवकी का स्तनपान किया था, थोड़ा सा कब लौटने पर या जाते समय में देवकी जी ने जब उनको जन्म हुआ, जबकि वो बच्चे बन गए और जाने लगे, तो देखा जी ये भूखा जाएगा, तो अपना स्तन थोड़ा सा दिया, स्पर्श कराया। उसके नाते उन छह बेटों ने जब ही उनका दूध किया, देवकी का सभी का उद्धार हो गया और वो फिर मर करके चले गए, दूसरे उनका उद्धार हो गया, फिर जन्म नहीं हुए। इस तरह से कृष्ण जो संपूर्ण अंश से हैं, 16 कलाओं से हैं, नर लीला के रूप में गोलोक वृंदावन से अपने ठीक उसी रूप में ब्रज में पधारे और उनके बेटे हो गए और शादी ली जाए। और जब कंस ने इनको बुलाया अक्रूर के माध्यम से, जब आए तो आधे रास्ते में ही यमुना के बीच में ही वो लोग लौट गए और देवकी के पुत्र वसुदेव दिए बलदेव जी और कृष्ण। ये सब बातें हम लोग इसे सबक जाएंगे, आज यहीं तक रहे। आज कृष्ण का जन्म महोत्सव हुआ, बहुत सुंदर उसमें ये हुआ। कल उनके जन्म के संबंध में और उनकी बाल लीलाएं किशोर लीलाओं के संबंध में क्रम संपूर्ण कर गौर प्रमानंदे।